नमस्कार बच्चों, मैं अंगीशा लौट आई हूँ क्लास 9 के सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 14 भारत की जलवायु। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने कौन कौन से कारण हैं। तो कितने कारण थे? 7। वेरी गुड, 7 कारक थे जो कि हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार हमारे भारत की जलवायु को कितने हिस्सों में बांटा गया था, कितने ऋतुओं में बांटा था? 4। वेरी गुड, कौन कौन से? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। तो हमने 3 ऋतुएं कर ली थी, कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। और अब हम करेंगे शरद ऋतु, ऑटम सीजन। और इसके बाद हम भारत के वर्षा का वितरण और राजस्थान में वर्षा का वितरण और ये सब पढ़ेंगे, जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इस पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट कर दूं ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स कर लें, क्योंकि अब काफ़ी कुछ समझ आ ही गया। जल्दी से ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर हम जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सारे बच्चे अपने बुक में ध्यान देंगे। पेज नंबर है 139। मैं पढ़ रही हूँ, हर एक पैराग्राफ पढ़ूंगी, उसके बाद उसका मतलब समझाऊंगी। सारे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? तो पेज नंबर 139 में शरद ऋतु। यह मानसून लौटने का काल है। इस समय मानसून के लौटने से एवं सूर्य के दक्षिण गोलार्ध में जाने से तापमान में कमी आ जाती है। तापमान में परिवर्तन से वायु दाब का क्षेत्र भी दक्षिण की ओर खिसक जाता है। पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिमी से बदलकर उत्तर पूर्वी हो जाती है। इनके द्वारा तमिलनाडु व पठार के कुछ आंतरिक भागों में वर्षा होती है। तो शरद ऋतु में क्या होता है, इस समय ये कौन सा समय है? ये मानसून लौटने का समय है, मतलब इस समय मानसून लौटने लगता है। मानसून के लौटने से मतलब है कि अब सूर्य जो है वो कर्क रेखा से हटकर मकर रेखा की ओर चला जाएगा। पहले कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत मतलब सीधी पड़ती थी, तो अब सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ेंगी? सीधी मकर रेखा पर, जिसके कारण हमारे उत्तरी गोलार्ध मतलब जहाँ कर्क रेखा थी वहाँ का क्षेत्र क्या हो जाएगा? ठंडा। और दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र क्या हो जाएगा? गर्म। जिसके वजह से तापमान में बदलाव आया, वायु में बदलाव आएगा, और क्योंकि तापमान और वायु में बदलाव आए हैं तो पवनों की दिशाओं में भी बदलाव आना लाजमी है। तो पहले हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से बहती थी, अब वह बदलकर उत्तर पूर्वी दिशा से बहने लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब जो हाई प्रेशर है, उच्च वायु दाब है, वो उत्तरी गोलार्ध में बन गया है। क्यों? क्योंकि वहां का तापमान कम है और उसी ओर हिंद महासागर में निम्न वायु दाब बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अब बढ़ चुका है, ठीक है? जिसके कारण जो हवाएं हैं वो उत्तरी पूर्वी से बहती हुई नीचे की ओर आती हैं, और जब वो ऊपर से नीचे आती हैं तो वो बंगाल की खाड़ी, नॉर्थ ईस्ट से आती है ना, तो बंगाल की खाड़ी ईस्ट साइड में है, तो वो नीचे जब आती हैं तो बंगाल की खाड़ी से नमी उठाते हुए तमिलनाडु और पठार, मतलब पठार के जो प्लेट्यू रीजन है उसके अंदर के हिस्सों में बारिश करती है, ठीक है? ये था हमारा शरद ऋतु, यहाँ ख़त्म हो गया। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है भारत में वर्षा का वितरण। पेज नंबर 139 में ही दिया है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। हमारे देश में वर्षा का वितरण समान नहीं है। वर्षा के क्षेत्रीय वितरण के आधार पर देश को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये क्या बोल रहा है कि हमारे देश में वर्षा मतलब रेनफॉल बारिश, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन विभाजन, वो क्या है? इक्वल नहीं है, समान नहीं है। हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं होता, नियमित रूप से नहीं है। इसलिए वर्षा के क्षेत्रीय वितरण मतलब एरिया वाइज अगर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे देखें तो देश को, हमारे भारत को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन कौन सा वो भाग है? अधिक वर्षा वाले भाग, फिर साधारण वर्षा वाले भाग, फिर आते हैं न्यून वर्षा वाले भाग, और फिर आते हैं उपर्याप्त वर्षा वाले भाग, मतलब ज़्यादा, फिर थोड़े कम, फिर थोड़े कम, फिर बिल्कुल ही कम, ठीक है? तो पहला है अधिक वर्षा वाले भाग, एक एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो क, अधिक वर्षा वाले भाग, बुक में सारे बच्चे ध्यान देंगे। इसमें आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम व हिमालय के दक्षिण पर्वतीय तलहटी, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पश्चिमी तटीय मैदान तथा पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल वाला भाग शामिल है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जो इसमें क्या बता रहा है, इसमें एक तो जगह के नाम दिए कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, और सबसे ज्यादा बारिश हम तब मानेंगे जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो रही होगी। तो कौन कौन से एरियाज हैं वो, एक तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया है, ठीक है, जिसमें आता है आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। फिर उससे आगे हम बढ़ेंगे, वेस्टर्न साइड में बढ़ेंगे तो फिर आता है हिमालय का रीजन। जहाँ से हिमालय शुरू होता है ना, वहाँ का जो सबसे निचली एरिया है, जो लैंड एरिया है जहाँ पे लोग बसते हैं, वहाँ पे बहुत बारिश होती है, ठीक है। फिर हम और आगे बढ़ें तो बिहार, झारखंड, मतलब थोड़ी नीचे की ओर आए तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, फिर आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड, फिर नीचे आएंगे तो और कौन सी एरियाज हैं, नीचे आएंगे तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है तथा पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, मतलब जो वेस्टर्न घाट है जो केरला के साइड में है, जो हमने पढ़ा था कि अरब सागर से जब हवाएं आती हैं तो पश्चिमी घाट से टकराते हुए सीधे बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं, ठीक है, तो वो भी एरिया सबसे अधिक वर्षा वाले भाग में शामिल होता है। यहाँ पे बारिश जो है वो मैंने बताया था कितने से ज़्यादा होती हैं, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार मतलब जो हमेशा रहते हैं, उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल रीजन, जो इक्वेटर के ऊपर नीचे पास वाले एरिया है ना, वो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं जहाँ बारिश हमेशा होगी, तो वहाँ के पेड़ पौधे तो हमेशा हरे भरे मिलेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, इनके बाद आता है साधारण वर्षा वाले भाग। मैं बुक से पढ़ रही हूँ, सब फिर से बुक में ध्यान देंगे। इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट के पूर्वोत्तर ढाल, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ और है झारखंड, उड़ीसा, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमालय के तराई क्षेत्र, पूर्वी तमिलनाडु आदि शामिल हैं। यहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ पर मानसूनी वन मिलते हैं। तो साधारण वर्षा मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी बारिश होती है, मतलब नॉर्मल बारिश होती है, ठीक है। इनमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, वेस्टर्न घाट का पूर्वोत्तर एरिया, जो हमारा पश्चिमी घाट था ना उसका ईस्टवर्ड एरिया, मतलब कि अगर हम एक लाइन खींचें, ठीक है, और उसको बोलें कि ये वेस्टर्न घाट है, तो उसके लेफ्ट साइड में हम बोलेंगे कि ये है पश्चिमी भाग और उसके राइट साइड में पूर्वी भाग, ठीक है। तो पश्चिमी भाग में तो हमने पढ़ा था वो कौन से कैटेगरी में आता है, सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो पूर्वी भाग उससे कम, तो ये आएगा साधारण वर्षा वाले में, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से हैं, बंगाल का साउथ वेस्ट पार्ट, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यूपी का साउथ ईस्ट रीजन, पूरा यूपी नहीं, यूपी का दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है, और हिमालय का तराई क्षेत्र, हिमालय का जो निचली भूमि है वो वाला एरिया, और पूर्वी तमिलनाडु, पूरा तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पे साधारण वर्षा होती है। साधारण वर्षा मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कितने से कितने तक हो, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। और यहाँ पे मानसूनी वन, मानसून फॉरेस्ट, जो कि दूसरे शब्दों में एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन ही हैं, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है न्यून वर्षा वाले भाग, वो हैं, मैं पेज नंबर 142 पे हूँ, ठीक है, ग, न्यून वर्षा वाले भाग, सारे बुक में ध्यान दें। इसके अंतर्गत दक्षिणी प्रायद्वीपीय का आंतरिक भाग, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उत्तरी व दक्षिणी आंध्र प्रदेश तथा मध्य पूर्वी महाराष्ट्र शामिल है। इस भाग में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये कौन से एरिया है, ये है एरिया जहाँ कम बारिश होती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं, थोड़ी कम बारिश होती है, ठीक है। वो कौन कौन से भाग हैं, वो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय। दक्षिणी प्रायद्वीपीय मतलब जो हमारा दक्षिण भारत है, जो हमारा साउथ इंडिया है, उसका जो सेंट्रल पार्ट है, जो बीच वाला हिस्सा है वो है, ठीक है, उसको बोलते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय, साउथ इंडिया का अंदर वाला एरिया। फिर है मध्य प्रदेश, फिर है राजस्थान का उत्तरी भाग, जैसे भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है पंजाब, हरियाणा, फिर यूपी का साउथ पार्ट, दक्षिणी एरिया यूपी का, फिर नदन पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, और मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्वी एरिया किसका, महाराष्ट्र का, ठीक है। ये सारे राज्य, ये सारे एरियाज इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और यहाँ पे बारिश कितनी से कितनी सेंटीमीटर तक होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, ठीक है। लास्ट हमारा है अपर्याप्त वर्षा वाले भाग। मैं बुक में पढ़ी हूँ, सारे बुक में ध्यान देंगे। इस भाग में तमिलनाडु का रॉयल सीमा क्षेत्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब व लद्दाख आदि शामिल है। यहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब ये वो एरियाज है जहाँ बारिश बहुत ही कम होती है भाई, ठीक है, कितने से कम, 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। वो कौन कौन से एरिया हैं, देखो आपकी बुक में जो ये रॉयल सीमा दिया हुआ है वो बताया है कि तमिलनाडु का एरिया है, लेकिन मैंने इसको गूगल किया था तो मुझे आंध्र प्रदेश दिखा रहा था। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से जिलों को मिला के रॉयल सीमा बनती है, कुर्नूल, अनंतपुर, चित्तूर और कडप्पा। कटप्पा नहीं, बाहुबली वाला कटप्पा नहीं, ये कडप्पा है, ठीक है। ये सारे जिलों को मिलाकर रॉयल सीमा क्षेत्र बनता है जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, ठीक है, इन इलाकों में बहुत ही कम बारिश होती है। और राजस्थान तो आना ही आना है, राजस्थान का कौन सा, वो भी वेस्टर्न, क्योंकि वहाँ हवा आते आते ही भाई वहाँ पे बारिश ख़त्म हो जाती है, बारिश इस वजह से नहीं हो पाती है। और हमने अरावली वाला भी पढ़ा था, अरावली से पवने सीधे नहीं टकरा पाती जिसके कारण बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। तो पंजाब और राजस्थान का पश्चिमी भाग, फिर है कच्छ और लद्दाख, यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। इसके लिए मैप आपने देखा है, पेज नंबर 140 में मैप दिया हुआ है जो कि भारत का है, और यहाँ लिख रहा है औसतम वार्षिक वर्षा, वार्षिक मतलब एनुअल, एक साल में कितना बारिश होता है उसका रीजन दिया हुआ है। तो यहाँ जो संकेत है नीचे नीचे में राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो चार डब्बे बने हैं अलग अलग कलर के, और ये बताया है कि जो सबसे ऊपर वाला है, जो पिंक कलर का चेकबॉक्स है, वो है 200 से अधिक, इस कलर के जो भी एरियाज है ना वहाँ पे बारिश 200 से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद जो लाइंस हैं वो बता रहा है 100 से 200, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले क्षेत्र से कम वाले क्षेत्र। फिर है डॉटेड लाइन्स हैं वो हैं 50 से 100, फिर सबसे कम जो है वो प्लेन कलर है 50 से कम सेंटीमीटर तक बारिश। अब मैप में देखते हैं ये कहाँ कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा वाला हमने पढ़ा था ना, नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा एरिया था, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे एरियाज, और यहाँ का वेस्टर्न एरिया, ये साउथ वेस्टर्न एरिया, तो ये डार्क कलर के है ना, पिंक डार्क कलर के, तो मतलब यहाँ 200 से भी ज़्यादा बारिश होती है। फिर उसके बाद आते हैं ये लंबे लंबे लाइन्स जो कि हमने बताया था कौन से में थे, ये सारे एरियाज दिए हुए हैं, जैसे हिमालय का दिया हुआ है, तमिलनाडु है, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ और झारखंड है, उड़ीसा है, तो ये सारे रीजन का है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। उसके बाद है उससे कम, जहाँ कम बारिश होती है, ठीक है, वो कौन कौन सी एरियाज हैं, ये है पंजाब का थोड़ा सा एरिया है, फिर है राजस्थान का पूर्वी भाग, फिर है यूपी का एरिया, फिर है आंध्र प्रदेश, नीचे जाएंगे तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, ठीक है। ये सारे एरियाज में कितने से कितने सेंटीमीटर तक बारिश होती है, 50 से 100, वेरी गुड। फिर सबसे कम बारिश कहाँ होती है, 50 सेंटीमीटर तक या उससे भी कम जो बारिश है, वो जो प्लेन कलर का दिया हुआ है ना पूरा, वो सारे एरियाज हैं, जैसे राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न पंजाब, फिर लद्दाख का रीजन है, ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश का जो मैंने आपको रॉयल सीमा क्षेत्र बताया था, ठीक है, ये सारे में सबसे कम बारिश होती है। अब हमारा इंडिया का तो सारा हमने सीजन पढ़ लिया, रेनफॉल पढ़ लिया, अब राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के बारे में भी जान लेते हैं। तो राजस्थान की जलवायु पे आते हैं, हम नया टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, राजस्थान की जलवायु, पेज नंबर 142 में राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु विस्तृत रूप से मानसूनी जलवायु का ही भाग है, लेकिन यहाँ अनेक स्थानीय विषमताएं पाई जाती हैं। अधिकांश राजस्थान शीतोष्ण जलवायु कटिबंध में आता है। राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, पर्वतीय दिशा, पवनों की दिशा, मिट्टी का प्रकार व वनस्पति की मात्रा आदि महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो मॉनसूनल क्लाइमेट ही है, लेकिन राजस्थान में भी जैसे हमें इंडिया में अलग अलग जगह पे डिफरेंस दिखने मिले थे ना टेम्परेचर में, मौसम में, ठीक है, वैसे राजस्थान में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का जलवायु है जो कि हमें देखने मिलती है, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि आधे से ज़्यादा भाग राजस्थान का शीतोष्ण जलवायु कटिबंध है। ये शब्दों का यूज़ किया गया है जिसका अर्थ है शीतोष्ण मतलब ठंडा, जलवायु मतलब क्लाइमेट और कटिबंध मतलब जोन या क्षेत्र, जिससे हमें ये पता चलता है कि राजस्थान में सिर्फ रेगिस्तान और रेगिस्तान की गर्मी नहीं है, बल्कि राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे ठंडे जलवायु क्षेत्र भी पाए जाते हैं, मतलब ठंडा, जहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, अच्छे खासे पेड़ पौधे होते हैं, अच्छा मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, ठीक है। इस राज्य की जलवायु को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कारक हैं, वो है अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी व ऊंचाई, पर्वतीय दिशा, पवनों की दिशा, मिट्टी का प्रकार मतलब सॉइल टाइप, फिर लास्ट में आता है वनस्पति मतलब पौधों की वृद्धि, वेजिटेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे भारत के हमने पढ़ा था ना, वही सेम इसमें आप लाया होगा, जैसे समुद्र से जितने दूर जाते जाएंगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी, ऊंचाई पे जाते जाएंगे तो तापमान घटेगा, फिर पर्वतों की दिशा, इसमें राजस्थान का जो अरावली एरिया है वो अरावली पर्वत जो है वो ऐसे पोजीशन में है जिसके वजह से जो नीचे से हवाएं आती है ना वो उनसे टकरा नहीं पाती, क्योंकि वो टकराती नहीं है तो बारिश नहीं हो पाती, ठीक है। इसलिए थोड़ा वेस्टर्न पार्ट में जो रेगिस्तान और गर्मी ज़्यादा देखने मिलती है हमें। फिर यहाँ की मिट्टी कैसी है वो भी प्रभावित करती है जलवायु को। फिर यहाँ वनस्पति कैसे हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने ज़्यादा डेंसिटी में हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ नहीं है। जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे थोड़ा वातावरण ठंडा होगा, मौसम वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा होगा, और जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, इसलिए पेड़ काटने नहीं चाहिए, पेड़ बचाने चाहिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है जलवायु परिस्थितियाँ। जलवायु परिस्थितियों में है पेज नंबर 142 पे आ जाओ। परंपरागत रूप से राजस्थान को जलवायु के आधार पर मुख्यतः तीन ऋतुओं में बांटा गया है, ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु और तीसरा है शीत ऋतु। लेकिन जो भारत सरकार के मौसम विभाग द्वारा मानसून काल को आधार बनाकर वर्षा को निम्न ऋतुओं में बांटा गया है, पहला है शीतकालीन मानसून काल, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु कब से कब तक, दिसंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक, मार्च से मध्य जून तक। फिर ब है ग्रीष्मकालीन मानसून काल जो कि है वर्षा ऋतु जो कि है मध्य जून से मध्य सितंबर तक, और शरद ऋतु मध्य सितंबर से दिसंबर तक, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो राजस्थान की जलवायु है वैसे तो उसको तीन ऋतुओं में डिवाइड किया है, मतलब तीन सीजन्स बोलते हैं यहाँ है, कौन कौन सी, ग्रीष्म ऋतु समर सीजन, वर्षा ऋतु रेनी सीजन और शीत ऋतु विंटर सीजन। लेकिन भारत सरकार के अनुसार वही चार हैं, ग्रीष्म, शीत, वर्षा और शरद। अब हर एक हमने जैसे भारत के लिए पढ़ा था वैसे राजस्थान में पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे हैं, शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझते हैं, ठीक है। पहला है शीत ऋतु। शीत ऋतु का जो पहला कारक है तापमान। दिसंबर से फरवरी के महीने में सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है, इसलिए प्रदेश में तापमान कम होता जाता है। न्यूनतम तापमान कई बार कुछ स्थानों पर हिमांक से भी कम हो जाता है, जैसे सीकर, चूरू, डेगाना, फलौदी, माउंट आबू में तापमान काफी निम्न रहते हैं। सामान्य प्रदेशिक वितरण के अनुसार उत्तर में न्यूनतम तापमान 12 सेंटीग्रेड से कम व दक्षिण में 16 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। ये क्या तापमान में क्या बता रहा है, ये कम से कम जो दिसंबर से फरवरी के महीने में सूर्य जो है, सन जो है, वो उसकी पोजीशन कहाँ चली जाती है? ठंड के मौसम में सन कहाँ चला जाता है? साउथ में चले जाता है ना, मकर रेखा पे उसकी अब रोशनी पड़ती है, इसलिए तो हमारे भारत में ठंड पड़ती है, तो हम विंटर सीजन पड़ रहे हैं ना, इसलिए दिसंबर से फरवरी के महीने में सूर्य, क्योंकि सदन दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, इसके वजह से गर्मी यहाँ पे काफ़ी कम होती है, तापमान काफ़ी घट जाता है, कभी कभी कई जगहों पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। वो कौन कौन से एरियाज हैं? एरियाज का नाम दिया गया है सीकर, चूरू, देगाना, फलौदी और माउंट आबू में टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। ठीक है, यहाँ इस समय सबसे कम तापमान उत्तर में, नॉर्थ में 12 डिग्री से कम रहता है, और दक्षिण साउथ ऑफ राजस्थान में 16 डिग्री से ज़्यादा रहता है। मतलब उत्तर में तापमान क्यों कम रहता है? क्योंकि हमने पढ़ा था समुद्र से ऊंचाई, समुद्र से जितने ऊपर हम जाते जाएंगे टेम्परेचर उतना कम होते जाएगा। ठीक है, इसलिए जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो 12 डिग्री हो जाता है, और जब साउथ में आते हैं, राजस्थान के साउथ में, हमें कितना, 16 डिग्री देखने मिलता है। इसमें मैप दिया गया है पेज नंबर 143 पे, ये बताया है जनवरी के महीने में टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक कितना रहता है। तो सबसे कम टेम्परेचर जो है वो हमें देखने मिल रहा है नॉर्थ एरिया में है, नॉर्थ ऑफ राजस्थान, राजस्थान के उत्तरी भाग में, जो कि है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें आ रहा है हमारा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और अलवर के कुछ भाग। फिर उससे कम है बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, ठीक है, भरतपुर, ये सारे कौन से हैं, इनमें टेम्परेचर कितना रहता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर और 20 डिग्री और भी कहीं है, यहाँ है सिरोही के कुछ भाग में 20 डिग्री यहाँ पे भी रहता है। फिर है 20 डिग्री से ज़्यादा, जो पिंक कलर के एरियाज है ना, वो 20 डिग्री से ज़्यादा, जो कि जोधपुर के कुछ भाग हैं, पाली, जालौर, सिरोही का कुछ भाग, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा और झालावाड़, ये सब में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और इससे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम, और इससे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर उससे भी कम। ठीक है, ये मैप में आप पढ़ लो, और इस मैप को जितना अच्छे से देखोगे ना, आपको और उतने अच्छे से समझ आएगा। देखो, हम कोई भी चीज़ ना बुक से पढ़ेंगे तो ठीक है, समझ तो आता है, लेकिन जब हम उसको पिक्चर के फॉर्म में पढ़ते हैं ना, तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो कोशिश करना, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मैप्स खुद से बनाना सीखो, मैप्स के थ्रू ही पढ़ना सीखो। ठीक है, ये आपको आगे जाके भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये थे तापमान, इसके बाद आता है वायु दाब व पवने व वर्षा। पेज नंबर 142 पे हूँ मैं, सारे पेज नंबर 142 पे वायु दाब, पवने व वर्षा पे ध्यान दें। भीष्म गर्मी के कारण राजस्थान की पश्चिमी भाग में निम्न वायु दाब विकसित हो जाता है। मेघारित आकाश, सूर्य की सीधी व प्रखर किरणों के कारण धरातल अनंत गर्म हो जाता है। इसके संपर्क में आकर धूल भरी गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। इस ऋतु में तेज गर्म हवाएं व आंधियों का चलना पश्चिमी राजस्थान की जलवायु की विशेषता है। इस ऋतु में चलने वाली आंधियों से कहीं कहीं पूर्व मानसूनी वर्षा हो जाती है। तापमान के बाद आता है वायु दाब, पवने व वर्षा। पेज नंबर 142 में वायु दाब, पवने व वर्षा शीत ऋतु के उस पे ध्यान दें। शीत ऋतु में बेकाल झील व पेशावर के निकट विकसित उच्च वायु दाब केंद्र शरदकालीन मानसून को प्रभावित करते हैं। इस ऋतु में हिंद महासागर क्षेत्र पर निम्न वायु दाब रहता है, अतः स्थलीय उच्च वायु दाब से सागरीय निम्न वायु दाब की ओर पवने चलने लगती हैं। स्थलीय उत्पत्ति के कारण ये पवने शुष्क होती हैं, किंतु उत्तर पश्चिमी से आने वाले भूमध्य सागरीय चक्रवातों के साथ मिलकर ये पवने कहीं कहीं थोड़ी वर्षा करती हैं। इसे स्थानीय वर्षा में मावट कहते हैं। तो इस सीजन में बेकाल झील और पेशावर के पास जो है वो हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है। वहीं हिंद महासागर में लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिसके कारण हवाएं स्थल मतलब जहाँ हाई प्रेशर बनता है वहाँ से लो प्रेशर की ओर जो कि महासागर है वहाँ बहने लगती है। और क्योंकि ये हवाएं ज़मीन से चलती हैं, ज़मीन से इनकी उत्पत्ति होती है, उसके कारण हवाओं में नमी नहीं होती और वह शुष्क या रूखी होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इस समय कहीं कहीं थोड़ी बारिश होती है। और वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि जो नॉर्थ वेस्ट से मतलब उत्तरी पश्चिमी भाग में जो भूमध्य सागर है उसमें जो चक्रवात बनते हैं, साइक्लोन्स बनते हैं, वो साइक्लोन के साथ जो हवाएं हैं, जो हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बढ़ती हैं और वो चक्रवात की हवाएं, वो दोनों मिलकर राजस्थान की कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में बारिश करते हुए महासागर की ओर बढ़ती हैं, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में मावट बोलते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था मावट के बारे में, जो कि रबी फसलों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उनकी फसलों की ग्रोथ के लिए पानी ज़रूरी होती है। तो ये वर्षा ठंड के मौसम में होती है, जिसके कारण जो रबी फसलें हैं, वो फसलें जो ठंड में होती हैं, उनको इस वर्षा से पानी मिलती है और वहाँ से इनकी ग्रोथ होती है। इसके बाद है हमारा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में तापमान पहला कारक है। पेज नंबर 142 पे ही दिया गया है तापमान। मार्च में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है क्योंकि सूर्य स्थिति उत्तरायण होने लगती है। जून माह में तापमान उच्चतम हो जाता है। इस समय पूरे राज्य का औसतम तापमान 38 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, किंतु सर्वाधिक तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जो ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च के महीने से शुरू होती है, ठीक है, जिसमें जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है क्योंकि अब सूर्य दोबारा उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें अब सीधे कर्क रेखा पे पड़ती हैं, जिसके कारण राजस्थान में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसमें बताया है कि यहाँ सबसे कम टेम्परेचर कितना होता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे ज़्यादा कितने से कितने तक होता है, 40 से 45, 40 से 45 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। कभी कभी तो टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी चला जाता है, ठीक है। दूसरा कारण आता है वायुदाब, पवने व वर्षा। पेज नंबर 142 पे ही है। भीषण गर्मी के कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग में निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। मेघारित आकाश सूर्य की सीधी व प्रखर किरणों के कारण धरातल अत्यंत गर्म हो जाता है। इसके संपर्क में आकर धूल भरी गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। इस ऋतु में तेज गर्म हवाएं व आंधियों का चलना पश्चिमी राजस्थान की जलवायु की विशेषता है। इस ऋतु में चलने वाली आंधियों से कहीं कहीं पूर्व मानसून वर्षा हो जाती है। इसमें यह बताया है कि क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग वेस्टर्न एरिया में निम्न वायु दाब विकसित होता है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है, ठीक है। आकाश में मेघा नहीं, मेघा मतलब बादल नहीं बनते हैं, जिसके कारण जो सूर्य की किरणें हैं वह सीधे जमीन पर पड़ती हैं और जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके संपर्क में आकर जो हवाएं हैं वो धूल भरी हो जाती हैं, धूल हवाओं के साथ उठने लगती हैं, बहुत गर्म हो जाती हैं, शुष्क हवाएं हो जाती हैं, बहुत ड्राई हो जाती हैं, जिनको हम लू बोलते हैं। इस ऋतु में तेज गर्म हवाएं व आंधियों का चलना पश्चिमी राजस्थान की जलवायु की विशेषता है। और ये जो लू है ना, इसी से हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, जो जैसलमेर और बीकानेर का क्षेत्र है, इसी कारण तो जाना जाता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो इन जगहों पे चलने वाली आंधियाँ हैं ना, इस समय में जो आंधियाँ चलती हैं उनके कारण कहीं कहीं बारिश भी हो जाती है, ठीक है। ये हमारा ग्रीष्म ऋतु यहीं ख़त्म होता है। देखा, छोटा छोटा है ना, समझ आ रहा होगा आप सबको, क्योंकि आपने इंडिया के रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो राजस्थान का पढ़ना आसान है, सब समझ आ रहा होगा। तो हमने अभी शीत ऋतु कर लिया और ग्रीष्म ऋतु कर लिया। तीसरा आता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु पेज नंबर 142 पे ही दिया है तापमान। इस ऋतु में वर्षा के कारण ग्रीष्मकालीन तापमान थोड़ा कम हो जाता है। वर्षा प्रारंभ होने के बाद राजस्थान के विभिन्न भागों में सामान्यतः तापमान 18 से 30 सेंटीग्रेड तक रहता है। ये बोल रहा है कि क्योंकि ये वर्षा ऋतु है, मतलब बारिश का मौसम है, तो बारिश होने के कारण जो तापमान है वो कम हो जाता है। गर्मी में जितनी तापमान होती है, जब बारिश हो जाती है, तो उतना टेम्परेचर कम हो जाता है और थोड़ा मौसम ठंडा होता है। और जैसे जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो अरब सागर है वहाँ से हवाएं नमी लेते हुए पूरे भारत में घूमती हैं और उन्हीं हवाओं से राजस्थान में भी बारिश होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला है कि वर्षा प्रारंभ होने के बाद जो राजस्थान है, बारिश का मौसम शुरू होने के बाद जो राजस्थान के बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे क्षेत्र में तापमान 18 से 30 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और गर्मी के मौसम में हमने पढ़ा था कि 38 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक था, ठीक है, यहाँ थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा कारक दिया है, पेज नंबर 143 पे आ जाएं, वायु दाब व पवने। भीष्म गर्मी के कारण पश्चिमी राजस्थान में वायु दाब काफी कम हो जाता है, इसके विपरीत हिंद महासागर क्षेत्र में वायु दाब अधिक रहता है, अतः महासागरीय उच्च वायु दाब के स्थलीय निम्न दाब की ओर मानसूनी पवने चलने लगती हैं। इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, पहली बंगाल की खाड़ी का मानसून व अरबी सागरीय मानसून। इन दोनों ही शाखाओं से राजस्थान में वर्षा होती है। वायुदाब व पवने में क्या बोला गया है कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ ज़्यादा गर्मी होने के कारण जो थी लो प्रेशर हो गई थी, लेकिन अब बारिश का सीजन आ गया है। तो यहाँ पे बारिश आया कैसे? वो ऐसे ही, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी जिसके कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग का जो प्रेशर है एयर का वो काफ़ी कम हो गया था, और वहीं दूसरी ओर महासागर में प्रेशर हाई था। तो महासागर से जब पवने उठ के आती थी तो वह नीचे दो शाखाओं में बट जाती थी, एक शाखा जो अरब सागर से होकर आता था और दूसरा जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए आता था, और ये इन दोनों शाखाओं के कारण राजस्थान में वर्षा होती है। तीसरा कारक है वर्षा, पेज नंबर 143 पे ही है, सामान्यतः जून के अंतिम सप्ताह तक मानसून राजस्थान में पहुंच जाता है। बंगाल की खाड़ी व अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। राजस्थान की कुल वर्षा का 95% भाग इन्हीं पवनों से प्राप्त होता है। अरब सागरीय मानसून के मार्ग में अवरोध नहीं होने के कारण ये अधिक वर्षा किए बिना राज्य से गुजर जाते हैं। बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा सारे देश में वर्षा करती हुई यहाँ तक पहुँचते काफी शुष्क हो जाती है, पेज नंबर 144 पे दिया है। इन कारणों से राज्य का पश्चिमी भाग वर्षा से वंचित रह जाता है, किंतु अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग में वार्षिक वर्षा का औसतम 100 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में 25 सेंटीमीटर, दक्षिणी पूर्वी भाग में 75 से 100 सेंटीमीटर तथा शेष उत्तरी पूर्वी राजस्थान में 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा का औसत रहता है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी की ओर वर्षा की मात्रा कम तथा वर्षा की अनिश्चितता बढ़ती जाती है। इसमें यह बता रहा है कि जैसे ही जून का महीना खत्म होता है, जून का महीना खत्म हो रहा है मतलब गर्मी का मौसम जा रहा है, बारिश का मौसम आ रहा है, तो जैसे ही जून का महीना खत्म होता है वैसे ही मानसून राजस्थान में आ जाता है, और यहाँ बारिश का 95% भाग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से ही होती है, ठीक है। जो यहाँ बारिश होती है वो 95% किन हवाओं की वजह से होती है? वो हवाएं जो अरब सागर से आती हैं और बंगाल की खाड़ी से होते हुए आती हैं। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अरब सागर से जो हवाएं आती हैं वो अरावली से नहीं टकरा पाती, ठीक है, जिनके कारण वो बारिश नहीं कर पाती और वो राज्य से मतलब राजस्थान से सीधी निकल जाती हैं, और वहीं जो बंगाल की खाड़ी उनके जो पवने हैं वो पूरे भारत में बारिश करते हुए आते आते बहुत कम पानी लेते हुए आते हैं, या कहें तो बहुत नमी बहुत कम होती है, जिसके कारण राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर का कुछ क्षेत्र आदि में बारिश बहुत बहुत कम होता है, ठीक है, लगभग 25 सेंटीमीटर तक। और सबसे ज़्यादा बारिश होती है कहाँ? दक्षिणी पूर्वी इलाके में, जैसे बूंदी, कोटा, राजसमंद, है ना, जो साउथ ईस्ट एरिया है वहाँ पे 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। फिर आता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जिसमें 75 से 100 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। फिर उसके बाद आता है उत्तरी पूर्वी जो नदन ईस्टर्न एरिया है राजस्थान का, वहाँ पे होता है 50 से 70 सेंटीमीटर तक बारिश, और सबसे कम होता है राजस्थान के पश्चिमी भाग मतलब वेस्टर्न एरिया में, जो कि 50 से कम या 25 से भी कम सेंटीमीटर तक बारिश होती है। चौथा ऋतु है हमारा शरद ऋतु। इसके भी दो कारक है, तापमान और दूसरा है वायुदाब, पवने व वर्षा। पेज नंबर 144 पे दिया है शरद ऋतु। तापमान में लिखा है, वर्षा के बाद इस ऋतु के प्रारंभ में आकाश स्वच्छ रहने के कारण तापमान 38 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, किंतु सूर्य के दक्षिणांत होते जाने से तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है। उत्तरी राजस्थान में 20 सेंटीग्रेड से दक्षिणी की ओर 30 सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। ये बोल रहा है कि जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है, वैसे ही टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। लेकिन क्योंकि अब जो सूर्य है वो उसकी पोजीशन अब वो धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ने लगता है, जिसके कारण टेम्परेचर फिर से कम होने लगता है और नॉर्थ में टेम्परेचर 20 डिग्री तक आ जाता है और साउथ में टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। लास्ट है वायुदाब, पवने व वर्षा। इस ऋतु में कोई स्पष्ट वायुदाब क्रम नहीं बनता है, अतः पवने भी शांत रहती है। इस कारण इस ऋतु में यहाँ वर्षा भी नहीं होती। ये बता रहे कि क्योंकि यहाँ ना ज्यादा गर्म होता है और ना ज्यादा ठंडा मौसम होता है, जिसके कारण यहाँ वायुदाब का फॉर्मेशन हमें पता नहीं चलता, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश भी नहीं होती और काफी शांत पवने चलती है। ठीक है, तो ये हमारा जो राजस्थान की जलवायु थी जो चार ऋतुओं में बांटी गई है वो हमने पढ़ा। ठीक है, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन और ऑटम सीजन। लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है राजस्थान का वार्षिक वर्षा, जो कि हम पार्ट 4 में कवर करेंगे, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं आपके बुक में वो सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।